हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकी खुशी। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। हम देखेंगे पार्टनरशिप फॉर्म है क्या, उसके डेफिनेशंस क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं। तो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म एग्जैक्टली है क्या। तो फ्रेंड, यहाँ पे इन शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप कभी भी इंडिविजुअली नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपने इंडिविजुअल किया तो उसके लिए अलग फॉर्म है या फिर अलग बिजनेस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर्स बोलते हैं। बट पार्टनरशिप में आपको दो या दो से ज़्यादा लोगों की जरूरत होती है, तभी आप अपना बिजनेस फॉर्म करते हो। एंड ये जब दो लोग साथ में मिलकर या फिर दो से ज़्यादा लोग साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं तो उनके बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में डेफिनेटली सारी चीज़ें मेंशन होती है कि लाइक जैसे आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया तो अल्टीमेटली जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या फिर जो भी रिस्क होगा या फिर जो भी बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रहा है या फिर जो रन करने वाला है, वो सारी जिम्मेदारी सबके सब पर क्या होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। एंड डेफिनेटली अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कभी ना कभी तो आपको प्रॉफिट भी होगा एंड प्रॉफिट के साथ साथ आपको रिस्क या फिर लॉसेस भी बेयर करना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वली उन पार्टनर्स के साथ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये सारी चीज़ें उस एग्रीमेंट में लिखी होती है या फिर उस पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी मेंशन की होती है। तो फ्रेंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे पार्टनरशिप क्लियर है। अब थोड़ा सा हम इसको और भी डिटेल में देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप क्या बोल सकते हो, अ पार्टनरशिप इज अ काइंड ऑफ बिजनेस वेयर अ फॉर्मल एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या होता है, ऐसा टाइप का बिजनेस है जिनके बीच में क्या होता है, फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। और ये एग्रीमेंट किसके साथ होता है, अकेले तो आप एग्रीमेंट करोगे नहीं, बिटवीन टू और मोर पीपल, लाइक दो से ज्यादा लोगों के बीच में क्या होता है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। और भी मेंबर होंगे तो उनके साथ भी क्या होता है, फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। एंड उस एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है, हू एग्री टू बी द को ऑनर। वो क्या एग्री होते हैं कि जो सारे पार्टनर्स हैं वो क्या होते हैं, को ऑनर होते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और किस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी उनका बिजनेस है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे रन करना है उसके बारे में। एंड शेयर द इनकम और लॉसेस, और वो क्या शेयर करते हैं, इनकम एंड लॉसेस भी शेयर करते हैं ड्यूरिंग द बिजनेस जनरेटेड। जब बिजनेस जनरेट होता है या फिर जब बिजनेस को आगे लेके जाते हैं तो उसके साथ जो भी उनको प्रॉफिट या फिर जो भी लॉस होने वाला है वो एक ही साथ इक्वली क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। इवन आप और क्या बोल सकते हो कि ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है ना, ये डेफिनेटली कौन ऑर्गेनाइज करता है, टू या फिर दो से ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ पे। इंडिविजुअली तो आप इसको ऑर्गेनाइज करने वाले नहीं हो, तो यहाँ पे क्या होगा, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करोगे, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाती है, हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में आ जाती है। इवन आप क्या बोल सकते हो, ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो क्या है, कॉमन वे होता है किसका, पूल द रिसोर्सेज। बिकॉज आप अकेले हो तो आप सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। बट अगर आप पार्टनरशिप में हो तो आप सारे रिसोर्सेज को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। एंड डेफिनेटली ज़्यादा पार्टनर्स है तो उनके स्किल को भी यूज़ कर सकते हो एंड उनके एक्सपर्टीज को भी यूज़ कर सकते हो बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए। तो आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए एग्जांपल क्या है, मारुति सुजुकी एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसके एग्जांपल है पार्टनरशिप फॉर्म के।
तो फिर आई होप आपको यहाँ पे पार्टनरशिप का मीनिंग क्लियर है। अब हम इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे डेफिनेशन में आप क्या बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, यहाँ पे देखते हैं पार्टनरशिप क्या है, द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहाँ पे इन शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पार्टनरशिप क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन होता है किसके बीच में, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है। एंड इसमें क्या एग्रीड करते हैं लोग, प्रॉफिट एंड जो भी लॉस है उसको क्या करेंगे, इक्वली शेयर करते हैं। एंड जो बिजनेस रन किया जाता है, हो सकता है कि वो सब मिलकर उस बिजनेस को रन करें या फिर सबके बिहाव पे एक पर्सन भी उस बिजनेस को रन कर सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप देख सकते हो कि सपोज कुछ इंपॉर्टेंट एमरजेंसी कुछ मीटिंग आ गई एंड डेफिनेटली आपके पास दो या दो से ज़्यादा जो पर्सन है, हो सकता है कि सब लोग किसी ना किसी वर्क में बिजी हो, तो एट अ टाइम पे सारे तो वहाँ पे नहीं जा सके, तो उनके भी हाँ पे कोई एक पार्टनर जाके भी उस वर्क को कर सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो एक भी है वो क्या करता है, एक्टिंग फॉर ऑल करता है, मतलब सबको वो प्रेजेंट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। तो क्या बोल सकते हो, पार्टनरशिप एक ऐसा एसोसिएशन है जहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, इंडिविजुअली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर्स, कलेक्टिवली हम इसको क्या बोलते हैं, फॉर्म, एंड लीगली इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टनरशिप फॉर्म। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्लियर है। अब हम इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स डिस्कस कर ले। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, फर्स्ट फीचर्स क्या है? एग्रीमेंट। तो इन शॉर्ट आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, जब भी आप पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करते हो या जब आप पार्टनरशिप स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड ये जो एग्रीमेंट होता है उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं? अकॉर्डिंग टू द गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होते हैं, जहाँ पे मेंशन किया होता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सारे पार्टनर्स क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अल्टीमेटली प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी उनको क्या करना होता है, शेयर करना होता है। और यहाँ पे सारे पार्टनर्स एक साथ आके उस डीड को या फिर उस एग्रीमेंट को साइन करते हैं। समहाउ वहाँ पे वो भी मेंशन होता है कि किस पार्टनर्स ने कितना कैपिटल लाया, किसका कितना रेशियो वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें इस एग्रीमेंट में मेंशन की होती है। तो फ्रेंड है सेकेंड यहाँ पे देखिए क्या है, नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि डेफिनेटली आप क्या कर रहे हो, पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो या फिर पार्टनरशिप कर रहे हो, तो वहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन तो कर ही नहीं सकता, इंडिविजुअल पर्सन पार्टनरशिप नहीं स्टार्ट कर सकता, उसके लिए क्या बना है, सोल प्रोप्राइटरशिप बना है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म में अगर आपको पार्टनरशिप करना है तो वहाँ पे आपको कितने नंबर्स के रिक्वायरमेंट है, मिनिमम आप क्या बोल सकते हो, दो या फिर दो से ज़्यादा। बट मैक्सिमम के लिए आप क्या बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से वहाँ पे मैक्सिमम जो नंबर थे बैंकिंग में कितने नंबर्स थे, 10 मेंबर्स होने चाहिए थे, एंड अदर देन बैंकिंग कितने थे, 20 थे। बट अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से मैक्सिमम नंबर कितना बोला है, 100, मिनिमम तो वही दो या दो से ज़्यादा। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स को 50 रखा गया है। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स क्लियर है। अब हम नेक्स्ट फीचर देख लेते हैं। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे देखिए क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, पार्टनरशिप फॉर्म में भी क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी लाइक जब भी आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो उसके लिए आप क्या करते हो, बैंक से लोन लेते हो, किसी ना किसी से तो लोन लेते हो। तो इन फ्यूचर अगर आपका बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ, आप उस लोन को रीपे नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे बैंक के पास वो फुल अथॉरिटी होती है कि वो आपके पर्सनल एसेट्स को भी क्या करेगा, सेल कर सकता है अपने उस मनी को रिकवर करने के लिए। तो यहाँ पे पार्टनर्स के समटाइम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को भी वो लोग क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। आई होप आपको यहाँ पे ये फीचर्स भी क्लियर है। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे देखिए क्या है, कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी में आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या बताया था कि जो पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, इंडिविजुअली पर्सन बिजनेस को रन करता है, तो अगर उसका डेथ हो जाता है तो बिजनेस क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। सेम अंडर द पार्टनरशिप एक्ट में भी आप क्या बोल सकते हो, अगर सारे जो भी पार्टनर्स थे जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था उनमें से अगर कोई एक पार्टनर्स का भी डेथ हो जाता है तो वहाँ पे पार्टनरशिप क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। हाँ, अगर आपको बिजनेस कंटिन्यू करना है तो वो पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, आपको फिर से क्या करना होता है, एक न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट या फिर एक डीड बनाना होता है जहाँ पे आपके बाकी मेंबर्स के साथ या फिर आपको किसी और को ऐड करना है, जो भी है वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन करके अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो। या फिर आप क्या बोल सकते हो, कोई भी मेंबर क्या होता है, पागल हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, परमानेंट इलनेस हो जाता है, डिसेबिलिटी के कारण वो बिजनेस को हम लोग क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, उस बिजनेस को हम लोग वहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे कंटिन्यू, फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये फीचर्स क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव टू मेक प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो पार्टनरशिप फॉर्म है या फिर जो पार्टनर्स है वो किस पे वर्क करती है, किस ऑब्जेक्टिव पे वर्क करती है, टू मेक प्रॉफिट। अब यहाँ पे वो प्रॉफिट कैसे ला सकते हैं, या तो गुड्स को सेल करके या फिर अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करके, बट चैरिटी प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होता। चैरिटी लाइक एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, लाइक जो भी कस्टमर को क्या किया, आपने अपने गुड्स को सेल किया, सेल करने के बाद जो भी आपको पैसा मिल रहा है वो पैसे का यूज आपने क्या किया, लोगों को दान देने के लिए यूज कर दिया, तो उसको हम लोग प्रॉफिट में कंसिडर नहीं करेंगे। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो डेफिनेटली पार्टनरशिप फॉर्म में या फिर जब आप पार्टनरशिप स्टार्ट करते हो तो उस एग्रीमेंट में लिखा ही होता है कि जो भी चीज़ें होगी वो क्या होगी, आपके म्यूचुअल कंसर्न से होगी, सारी चीज़ें आप क्या करोगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो डेफिनेटली अगर प्रॉफिट हुआ तो वो भी आप शेयर करोगे, अगर लॉस हुआ तो उसको भी सब मिल के क्या करेंगे, शेयर करेंगे, कोई इंडिविजुअल उसको लेने वाला नहीं है। आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। तो डेफिनेटली आप पार्टनरशिप फॉर्म में हो या फिर पार्टनरशिप में हो तो यहाँ पे डिसीजन बस अकेले आपका ही नहीं होगा, जो भी डिसीजन होगा या फिर जो भी कंट्रोल होगा वो क्या होता है, म्यूचुअल कंसर्न से होगा या फिर ज्वाइंट एफर्ट से होगा, लाइक सबको मिलाकर ही क्या करोगे, आप डिसीजन लोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रिसर्च लेना है या फिर बिजनेस का कहीं पे एनालिसिस करना है तो आप इंडिविजुअल नहीं करोगे, सब लोग साथ में मिलकर क्या करेंगे, रिसर्च भी कर सकते हैं, एनालिसिस का प्रोसेस भी करेंगे। एंड फाइनली जो कंक्लूजन होगा उसको क्या किया जाता है, माना जाता है। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, नो सेपरेट एंटिटीज। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो पार्टनर्स है या फिर जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, अलग नहीं होते, उनका क्या होता है, लीगल एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी किसी पार्टनर्स पर कोई केस कर देता है जस्ट बिकॉज ऑफ द एनी रीजन, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस एक ही पार्टनर्स के ऊपर है, वो जो केस है वो एंटायर पार्टनरशिप फॉर्म पे होता है एंड उसका इफेक्ट भी एंटायर पार्टनरशिप फॉर्म पे होता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसका कोई भी सेपरेट एंटिटीज नहीं है, मतलब जो भी केस किया है उसका इफेक्ट है या फिर उसके जो भी कॉजेस है वो सारे पार्टनर्स को या फिर पार्टनरशिप फॉर्म्स को मिलकर उठाना होगा एंड समटाइम हो सकता है कि आपका फॉर्म क्लोज भी हो जाए, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नो सेपरेट एंटिटीज। जो भी पार्टनर्स है वो आपस में मिलकर एक दूसरे के क्या बनते हैं, एजेंट बनते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है या फिर जो भी पार्टनरशिप है इसमें 4 पार्टनर्स है, बट एट अ टाइम हर एक पार्टनर्स को कुछ ना कुछ वर्क दिया गया है। तो सपोज अगर आपको कुछ इमरजेंसी आ गया, कहीं पे जाके आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करना है, तो सारे ना जाके क्या करते हैं, अपने बिहाफ पे सब मिलके क्या करते हैं, किसी एक पार्टनर्स को भेजते हैं वहाँ पे, सो दैट वहाँ पे जाके वो मीटिंग को फाइनल कर पाए या फिर साइन करके आ पाए। तो सब लोग मिलके जो इस एक पर्सन को भेजते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजेंट। तो वो क्या करता है, एज अ एजेंसी वर्क करता है एंड डेफिनेटली उस सिग्नेचर के बाद या फिर उस मीटिंग के बाद जो भी रिजल्ट होगा, हो सकता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो इक्वली उनके साथ शेयर होगा एंड लॉस भी होगा तो उनको इक्वली बेयर करना पड़ता है, कोई एक वो पार्टनर्स बेयर करने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म को म्यूचुअल एजेंसी भी बोलते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे फीचर्स और पार्टनरशिप भी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पार्टनरशिप फॉर्म्स के एडवांटेज एंड उसके डिसएडवांटेजेस। फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक की खुशी। तो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। हम देखेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप एग्जैक्टली है क्या, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो फ्रेंड विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका मीनिंग क्या है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के मीनिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करने के पहले मैं बता दूँ कि ऑलरेडी मैंने इसके पहले जो मेरा प्रीवियस वीडियो था वहाँ पे मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया है अलॉन्ग विद द एग्जांपल, जो मेरा वीडियो था फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप मेरे उस वीडियो को देखिए सो दैट आपको वहाँ पे बेसिक चीजें समझ में आ जाएगी। एंड फ्रेंड डोंट वरी, उसका लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इवन अगर आप चाहे तो मेरे आई बटन पे क्लिक करके भी आप मेरे स्टूडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड अब हम आप देख लेते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप एग्जैक्टली है क्या। तो फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, हम लोग क्या, ये क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होगा हमारा सोल, सेकंड क्या होगा प्रोप्राइटरशिप। तो सोल इट मीन्स क्या होता है, सिंगल, मतलब आप अकेले या फिर इंडिविजुअल। देन जो वर्ड प्रोप्राइटरशिप है उसका मतलब क्या होता है, ओनरशिप, मतलब ऐसा बिजनेस जिसके आप क्या हो, इंडिविजुअल या फिर अकेले के खुद के मालिक हो, उसमें किसी और का इंटरफेयर नहीं, आप अकेले उस बिजनेस के क्या हो, मालिक हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। देन अब आप क्या बोल सकते हो कि जैसे कि मैंने बताया ये क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, मतलब सिंगल या फिर इंडिविजुअल, आप खुद क्या हो, अकेले उसके ओनर हो या फिर मालिक हो या फिर आपका उस पर अधिकार है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो ओन एंड कंट्रोल होगा कोई और करेगा क्या, नहीं, कौन करेगा, इंडिविजुअल, यानी कि जो इस पर्सन, जो इसका मालिक होगा उसी का क्या होगा, इस पर अधिकार होगा। देन उसके बाद आप क्या बोल सकते हो कि ये जो
अगर ये बिजनेस क्या आपका सिंगल ओनरशिप है, आप ही उस बिजनेस के ओनर हो, मालिक हो, आपका ही उस पर अधिकार है, तो डेफिनेटली उस बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज होगी, लाइक अगर कल को आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो वो भी आपको अपने, मतलब वो सारा प्रॉफिट किसका होगा, आपका होगा, आपको किसी और के साथ शेयर करने की जरूरत है क्या? नहीं। सेम चीज अगर फ्यूचर में आपको बिजनेस में लॉस हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, लॉस को बियर कौन करेगा, आप अकेले ही करने वाले हो। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये चीजें क्लियर है। डन। अब हम इसके, अब हम देख लेते हैं कि ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो किस टाइप का बिजनेस होता है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, जो स्पेशली जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उसके लिए क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप सुटेबल होता है। और ये स्मॉल बिजनेस क्यों होता है, डेफिनेटली इनिशियल स्टेज में आप जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, इनिशियल स्टेज में जब आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हो, दैट टाइम तो आप पहले क्या करते हो, स्मॉल बिजनेस ही स्टार्ट करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। जैसे आपको लग रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, आपको और भी चीजें बढ़ानी है, कुछ ब्रांच ओपन करना है, दैट टाइम आप पार्टनरशिप या फिर आगे का ऑप्शन आप हिसाब से चूज करते हो। बट स्पेशली ये किसके लिए सुटेबल होता है, स्मॉल बिजनेसेस के लिए। तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीजें क्लियर है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स के लिए आप क्या बोल सकते हो, जैसे आपको क्या ओपन करना है, अपना खुद का हेयर सलून ओपन करना है, ब्यूटी पार्लर ओपन करना है, या फिर कोई स्मॉल रिटेल शॉप ओपन करना है, तो इन सब के लिए किसका यूज किया जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का। इवन मेडिकल स्टोर या फिर मेडिकल शॉप भी जो ओपन करना है आप किसके लिए करते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए करते हो। एंड डेफिनेटली सिंगल सेलर है, आप खुद के इसके मालिक हो, तो इसलिए आपको ये ओपन करने के टाइम ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं पे आपको लाइक कुछ एक स्पेशल केस में आपको जस्ट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर होता है। तो फ्रेंड इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो, द सोल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप विच इज ओन एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। इसको ओन एंड कंट्रोल कौन करता है, इंडिविजुअल पर्सन ही करता है, बिकॉज ये क्या है, अकेला ही उसका क्या है, मालिक है। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए, फर्स्ट फीचर क्या है, सिंगल ओनरशिप, जस्ट मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो अकेला पर्सन है, जिसके पास अकेले का अधिकार है, वो क्या करता है, सारी चीजों को खुद ही हैंडल करता है, सारे कैपिटल असेट को भी वो खुद ही क्या करता है, एक्सेस करता है। तो यहाँ पे क्या है, ये सिंगल ओनरशिप। आई होप आपको यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गई। सेकेंड यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बिकॉज आप क्या हो, अकेले इस बिजनेस के मालिक हो, कोई तीसरा आके यहाँ पे आपके साथ इंटरफेयर करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि जब भी आपको चाहिए आप बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो, फॉर्मुलेट कर सकते हो, और जब आप कुछ आप इस बिजनेस को क्लोज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मेशन एंड क्लोजर बहुत ही इजी होता है। थर्ड फीचर में आप क्या बोल सकते हो, वन मैन कंट्रोल। वन मैन कंट्रोल क्यों है, बिकॉज सिंगल ओनरशिप किसके पास होती है, वही पर्सन उसका क्या होता है, मालिक होता है, उसके पास अधिकार होता है, इंडिविजुअल वही पर्सन होता है, कोई और इंटरफेयर करने वाला है क्या, नहीं। तो यहाँ पे कोई भी तीसरा पर्सन अगर इंटरफेयर नहीं करेगा तो सारा कंट्रोल किसके हाथ में होगा, जो उसका क्या होगा, ओनर होगा। तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीजें भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज, ये भी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये क्या है, सिंगल ओनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप में यहाँ पे आपको ज्यादा पेपर वर्क की जरूरत है क्या, लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत है क्या, नहीं है। हाँ, बट सम स्पेशल केस अगर आ जाता है तो वहां पे आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना होता है, एंड रजिस्ट्रेशन के बाद आप कंटिन्यू अपना बिजनेस कर सकते हो। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीजें भी क्लियर है। नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में आप क्या बोल सकते हो कि जब आपका जो बिजनेस है, किस केस में टर्मिनेट होता है, जब उस बिजनेस का मालिक का क्या होता है, डेथ हो जाता है या फिर रिटायरमेंट हो जाता है, तो डेफिनेटली वो बिजनेस क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे फीचर्स क्लियर है। अब हम नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज। तो यहाँ पे आप इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज क्यों बोल सकते हो, बिकॉज ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके आप क्या हो, इंडिविजुअल या फिर अकेले के मालिक हो, तो ये आपके ऊपर है, आपको बिजनेस कब स्टार्ट करना है और आपको बिजनेस कब क्लोज करना है। इवन आप बोल सकते हो, सपोज अगर आपने कोई भी किराना का स्टोर ओपन किया है एज अ बिजनेस, सो डेफिनेटली ये आपके ऊपर है कि आपको वो जो आपकी शॉप है या फिर जो दुकान है, आप उसको कब ओपन करते हो एंड कब उसको क्लोज करते हो। तो यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज। आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट एडवांटेज क्लियर है। सेकेंड एडवांटेज यहाँ पे देखिए क्या है, लेस कैपिटल एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे लेस कैपिटल एक्सपेंसिव क्यों है, बिकॉज ये जो बिजनेस है वो किसके लिए बेनिफिटेड होता है, स्मॉल बिजनेस के लिए। स्मॉल बिजनेस आप ओपन कर सकते हो, तो अगर ये स्मॉल बिजनेस के लिए है तो डेफिनेटली आपका जो कैपिटल है या फिर आपका जो भी एक्सपेंसेस है वो भी क्या होगा, कम लगा होगा कंपेयर टू द अदर बिजनेस, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लेस कैपिटल एक्सपेंसिव।
थर्ड यहाँ पे देखिए क्या है, कंप्लीट कंट्रोल। बिकॉज कंप्लीट कंट्रोल क्यों है और किसका होगा, कंप्लीट कंट्रोल इसलिए है बिकॉज ये क्या है, हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है, आप अकेले उसके मालिक हो, तो इसलिए जो कंप्लीट कंट्रोल है वो किसके पास होता है, आपके पास इसका राइट्स एंड इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस का। इस बिजनेस को कोई और कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं। इसलिए आप क्या बोलते हो कि कंप्लीट कंट्रोल किसके पास होगा, इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप के पास ही होता है। आई होप आपको यहाँ पे ये एडवांटेज भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। जैसे कि मैंने आपको बताया ये बिजनेस क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो यहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती है कंपेयर टू द अदर बिजनेस। तो यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होती है, बहुत ही कम होती है। हाँ, सम स्पेशल केस में आपको आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसके बाद ही आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। तो आई होप आपको यहाँ पे ये एडवांटेज भी क्लियर है। नेक्स्ट एडवांटेज यहाँ पे देखिए क्या है, मोनोपोली ऑन ऑल प्रॉफिट। डेफिनेटली आप इसके मालिक हो, तो इस बिजनेस में आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसके मालिक कौन होगा, आप ही होगा। ये आपके ऊपर है, आप कैसे इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। एंड जब भी आपको पता हो कि ये प्रॉफिट आपको किसी और के साथ शेयर नहीं करना है, तो सम टाइम वहाँ पे हमको और मोटिवेशन मिल जाता है या फिर हम और मेहनत कर लेते हैं, करने लगते हैं, सो दैट हमारा बिजनेस क्या है, और प्रॉफिटेबल हो और हमको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिले। तो इसलिए हम लोग सुबह बोलते हैं मोनोपोली ऑन ऑल प्रॉफिट। आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, कॉन्फिडेंशियली ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस बिजनेस में आपके साथ कोई और है क्या? नहीं। तो यहाँ पे प्राइवेसी भी आप मेंटेन कर सकते हो, आपको जो भी चीजें हाइड करनी है वो आप अपने पास खुद से सुरक्षित में रख सकते हो, किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ओनर तो आप ही हो, तो लीगली कोई और पर्सन आपके इस डॉक्यूमेंट्स को या फिर इन्फॉर्मेशन को नहीं देख सकता जब तक आप खुद से ना दिखाना चाहें। तो इसलिए क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। डेफिनेटली अगर आप इंडिविजुअल उसके मालिक हो तो आप अपना डिसीजन कभी भी ले सकते हो, आपको 10 लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है, उनकी मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप क्या हो, इसके इंडिविजुअल मालिक हो। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे एडवांटेजेस भी क्लियर है। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों होगा, बिकॉज हमारा जो बिजनेस है वो क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप का है। जो बिजनेस होगा वो किसके लिए है, स्मॉल बिजनेसेस के लिए। तो अगर स्मॉल बिजनेस के लिए, तो डेफिनेटली हमने यहाँ पे क्या किया, लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज किया, हमारे कैपिटल भी क्या हो गए, कम हो गए कंपेयर टू द अदर बिजनेस। तो यहाँ पे रिसोर्सेज भी क्या होती है, कम होती है, बिकॉज हमारे पास उतने ऑप्शंस नहीं होते, उतने रिसोर्सेज नहीं होते। तो इससे हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज। डन। सेकेंड यहाँ पे देखिए क्या है, लिमिटेड ग्रोथ। अब अगर हमारे पास रिसोर्सेज ही कम है, हमारे पास कैपिटल ही कम है, तो डेफिनेटली आप अपने उस बिजनेस को उतने ज्यादा ग्रोथ पे लेके नहीं जा सकते कंपेयर टू द अदर बिजनेस। क्यों? बिकॉज ग्रोथ के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सफिशियंट कैपिटल होना चाहिए, रिसोर्सेज होना चाहिए, सो दैट आप उस रिसोर्सेज को काफी अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ, आप अपने बिजनेस को काफी अच्छे से एंगेज कर पाओ। बट आपके पास ये सारी चीजें क्या है, बहुत ही कम है। इवन आप इस बिजनेस के क्या हो, अकेले के मालिक हो, तो आपका सारा दिन उस बिजनेस को एंगेज करने में या फिर उस बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज में ही चला जाता है, आप बाकी चीजों बाकी नए चीजों पे फोकस ही नहीं कर पाते, इससे यहाँ पे ग्रोथ भी क्या है, बहुत ही कम होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी यहाँ पे क्यों है, बिकॉज अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहाँ पे क्या नीड होता है, कैपिटल का, पैसे की जरूरत होती है। तो यहाँ पे अगर आपका स्मॉल बिजनेस है, बिकॉज आप क्या हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, तो सम टाइम आप इस मनी को आपके अपने खुद के सेविंग फंड से या फिर अपने रिलेटिव से बोरो करते हो, एंड कभी कभी आप क्या करते हो, बैंक से भी बोरो करते हो। बट इन सम सिचुएशन अगर आपका बिजनेस लॉस में जाता है, तो वहाँ पे बैंक कौन सा स्टेप लेगा, बैंक क्या करेगा, आपके बिजनेस को बंद करके, क्लोज करके या फिर सेल करके अपने उस पैसे को रिकवर करेगा। बट अगर आपका बिजनेस में उतने पैसे भी नहीं है कि आप बैंक को दे पाओ, तो वहां पे बैंक क्या करेगा, तब डेफिनेटली आपके पर्सनल प्रॉपर्टी को भी वो सेल करना स्टार्ट करेगा, हो सकता है कि आपके घर को भी बेच दे। इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप में यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज के भी प्रॉब्लम हमको फेस करने होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, लिमिटेड ट्रेड। आपका ट्रेड क्या है, वो भी लिमिटेड है, आपका जो स्केल होगा वो भी क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। क्यों? आपके पास रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है, आपके पास कैपिटल अच्छे नहीं, आपका ग्रोथ भी अच्छे नहीं है, और आपकी लायबिलिटी भी ज्यादा है, तो उसके लिए हमारा ट्रेड भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। आप लार्ज लेवल के बिजनेस पे फोकस नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास रिसोर्सेस ही नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या है, लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी। मैनेजरल एबिलिटी भी हमारे पास क्या होती है, लिमिटेड होती है। क्यों होती है? बिकॉज हम इंडिविजुअल क्या है, उस बिजनेस के मालिक है। तो समटाइम हमारी जो सारी एक्टिविटीज है वो किस में चल जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने की। और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट हमारा जो बिजनेस है वो काफी अच्छे से चले एंड हमको प्रॉफिट हो। तो इन सम सिचुएशन जो वहां पे प्रोप्राइटर्स है वो कौन कौन से रोल परफॉर्म करता है, कौन कौन से मैनेजरल फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि वो एज अ सेल्समैन का भी काम कभी खुद करता है, परचेज का भी करता है, मार्केटिंग का भी करता है, एंड सेलिंग पर्सन के साथ डीलिंग का काम भी वो कौन करता है, वो खुद ही करता है। क्लाइंट के साथ बात करना, डील करना, ये सारा काम भी कौन करता है, वहां पे सोल प्रोप्राइटर ही करता है बिकॉज वो इंडिविजुअल इस बिजनेस का मालिक है, उसने अपने इस बिजनेस में किसी और पार्टनर का हेल्प नहीं लिया है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी। तो फ्रेंड ये क्या थे, डिसएडवांटेजेस थे किसके, सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे मैंने आपको जो भी सोल प्रोप्राइटर्स के मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज जो भी एक्सप्लेन किया वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड नोट्स चाहिए तो फ्रेंड फॉर दैट आप मुझे मेरे मीडियम पे फॉलो कर सकते हैं। डोंट वरी, मीडियम का लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इवन अगर आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा डिस्कशन करना है तो उसके लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।